सुनो, ये गाड़ी मेरे घर से बाहर निकली है ना?
मुझे भी ऐसा ही लगता है सर।
अच्छा, तुम्हें भी? दरवाजा खुला है, चलो अंदर।
ठीक है, हाँ हाँ ठीक है।
साबिर साहब, बाबा आ गए हैं।
आ गए तो आने दो, तो इसमें खुशी की क्या बात है? जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए।
जी ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम बाबा।
वालेकुम अस्सलाम।
क्या हुआ?
अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा हुआ आप आ गए, हम सब तो परेशान हो गए थे।
खामखवा, हर इंसान काम के बाद आखिर में अपने घर ही आता है। अनीस और बच्चियां कैसी हैं?
वो सब ठीक हैं।
अच्छा सुनो, मेरा तौलिया ऊपर ही लेकर आओ।
आपका तौलिया मैं पहले ही रख चुकी हूँ, बाथरूम में दरवाजे के पीछे।
सुनो, ये अपने घर से जो गाड़ी बाहर निकली है वो किसकी थी?
मेरे पास आए थे बाबा जान, एक पर्सनल मामला था। आप अपना हमें नहीं बताएंगे क्या हुआ था?
फिलहाल मैं जरा नहाने जा रहा हूं, आकर बताता हूं। सुनो, एक खुशखबरी है।
जाओ अपना काम करो,
ठीक है। अनीस बाजी, अनीस बाजी, हाँ, ये क्या हुआ है? आप यहाँ कैसे आ गई? सोचा नहीं कि हल्का सा भी आगे जाती तो स्विमिंग पूल में गिर चुकी होती। मुझे बताएं आपको यहाँ पर कौन लेकर आया है? क्या हुआ है बाजी? बस करें, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि क्या हुआ है। उस औरत की बातों का आपको बहुत बुरा लगा है ना, लेकिन सब बकवास था। अच्छा, मैं आपको एक खुशी की खबर सुनाती हूँ, फिरदौस साहब आ गए हैं। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, वो खैरियत के साथ और बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ गए हैं। वो अभी नहाकर आते ही होंगे। घर के मालिक आ चुके हैं, अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या जी, पता है क्या, उन्हें भी सब कुछ मालूम होना चाहिए। वो जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलेंगे, मैं अलिफ से लेकर ये तक उन्हें एक एक बात बताऊंगी। वो औरत मेरे ही घर में मुझे 5 लाख रुपए का चेक देकर मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। रुक जाएं, सबर करें, मैं एक एक बात जाकर फिरदौस साहब को बताऊंगी। आखिरकार फिरदौस साहब को भी मालूम होना चाहिए कि अगर वो कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाते हैं तो इस घर के अंदर क्या क्या ड्रामे होने लगते हैं। अब दोबारा इस घर के अंदर आएगी तो कहेगी मैं इस घर की मालकन हूँ, और आपसे कहेगी आप तो मर ही जाएं। चलें अब अंदर चलते हैं। हम अंदर चलकर साबिर की सारी कहानी जो उस औरत के साथ चल रही है ना, फिरदौस साहब को बताते हैं, ताकि साबिर साहब को भी पता चले कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। हाँ मेरी बहन, मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ, खुदा हमारे सर पर फिरदौस साहब का साया हमेशा सलामत रखे। खुदा ना खौस्ता अगर उनके सर का एक भी बाल कम हो जाए तो आपके साथ साथ वो लोग मुझे भी घर से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, और आखिरकार एक दिन निकाल ही देंगे। चलें अब अंदर चलें।
वो खुद कह रहा है, मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी उससे बुराई करूँगी।
फिर वो अपनी तरफ से कह रहा होगा, लेकिन तुमने भी कुछ कहा ही होगा।
कह रही हूँ, नहीं कहा।
अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारी बोलने की वजह से।
ओहो, कहाँ से आ रही हो? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
बाबा वापस आ गए हैं?
तुम्हारे बाबा कहीं गए ही नहीं थे जो वापस आते, लेकिन तुम्हारे दादा जान आ चुके हैं।
अच्छा, सच में कहाँ है वो?
साबिर,
अस्सलामुअलैकुम दादा जान।
अस्सलामुअलैकुम दादा जान।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तुम लोग घर पर ही हो?
जी बाबा जान।
सुनो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, मुझे सबसे काम है। जीवार और अनीस को भी बुलवा लो।
हम यहीं पर हैं जनाब।
हाँ अच्छा ठीक है, मैं नीचे ही आ रहा हूँ।
अच्छा मैं जरा जाकर तुम्हारे दादा जान के लिए जूस बना कर लाती हूँ, नहाने के बाद बहुत अच्छा रहता है।
अस्सलामुअलैकुम बाबा।
वालेकुम अस्सलाम।
आपको मालूम है कि दादा जान को हमसे क्या काम है?
क्या करें, अपने कमरों में जाएं या रुक जाएं?
एक मिनट यहीं रुक जाओ, सुन लो बाबा जान को हमसे क्या काम है।
ठीक है।
ये लीजिए जनाब, मैंने अभी अभी आपके लिए ताजा खीरे का शरबत तैयार किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इसे मेज पर रख दो और यहाँ बैठ जाओ।
अस्सलामुअलैकुम।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मुझे दे।
अस्सलामुअलैकुम अनीस, तुम ठीक हो? बैठ जाओ। जिवार तुम भी बैठ जाओ।
जी शुक्रिया।
साबिर तुम भी बैठ जाओ।
ठीक है बाबा जान, मैं आपके सामने खड़े रहना चाहता हूँ। हम सबसे क्या काम है बाबा जान?
हाँ बताता हूँ। आज यहां सिर्फ आती की जगह खाली है।
इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता करेगा।
साबिर बेटा।
जी बोले।
मैंने ताहिर के बेटे को ढूंढ लिया है।
ये तो बहुत अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है।
किस तरह से?
मैंने उसे नहीं ढूंढा है, सुनो खुदा ने उसे ढूंढा है। खुदा ने मेरे यूसुफ को मुझसे मिला दिया है और कहा, फिरदौस ए मेरे गुनाहगार और ए मेरे दिल शकिस्ता बंदे, ये लो अपने यूसुफ को।
इसका नाम यूसुफ है।
वाह भाई, क्या तुम्हारे स्कूलों और कॉलेजों में यही सब कुछ सिखाते हैं? मैंने तो मिसाल दी है। मैं तुम्हें हजरत याकूब या हजरत यूसुफ का वाकया नहीं सुना रहा हूँ। तुम्हारी क्लासों में तुम्हें क्या सिखाया जाता है?
हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के वाकयात नहीं सिखाते हैं।
बस यही गलती कि तुम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है।
लेकिन आपने उसे ढूंढा कैसे?
बाद में बताऊंगा।
अगर उसका नाम यूसुफ नहीं है तो फिर क्या है?
बाद में।
अभी कहां है वो?
बाद में बताऊंगा।
क्या बाद में बताएंगे बाबा जान? अगर वो लड़का मिल ही गया है तो बाद में क्या है फिर? हम कोई गैर हैं क्या?
तुम सब उसके घर वाले और रिश्तेदार हो, गैर कोई नहीं है।
फिर क्यों कहे जा रहे हैं बाद में? हमें नहीं पता चलना चाहिए कि कौन है? उससे मिले भी नहीं हमें।
सुनो,
तो
वो लड़का अभी तक हैरान और परेशान है, मुश्किलें झेल रहा है। वो सोच रहा है जमीन और आसमान ने मिलकर उसकी मुश्किलात को और भी बढ़ा दिया है। सबसे नाराज है, अपनी मां से भी नाराज है कि वो क्यों लेकर भागी थी उसे। मुझसे भी नाराज है कि मैंने क्यों उसे नहीं ढूंढा। अपने बाप से भी नाराज है कि क्यों उसका इंतकाल हो गया। सभी से नाराज है। अब अगर एक दफा भी तुम उसके पास गए और कहा कि मैं तुम्हारा चाचा हूं, आओ मेरे गले लग जाओ, तो शायद परेशानी से वो मर ही ना जाए। काफी वक्त से उस पर तवज्जो दे रहा था, अब नरम हो गया, बिल्कुल मोम की तरह पक चुका है, बिल्कुल एक दरख्त के ताजा फल की तरह। अब सिर्फ पक कर उसके नीचे गिरने का इंतजार है। लेकिन फिलहाल उसको बहुत बड़ी जहनी परेशानी है। अब तक मुझे खुद को दादा जान कहलवाने की हसरत बाकी रह गई है।
ठीक है बाबा जान, जैसे आपकी मर्जी।
माफ कीजिएगा जनाब।
क्या हुआ जीवार?
जनाब एक बात है जो मैं आपसे करना चाहती हूं। आखिरकार ये बात सबको पता होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन बाद में बताना।
लेकिन जनाब एक बात ऐसी है।
जो भी बात करनी है बाद में करना जिवार, अभी मुझे कुछ और बात करनी है।
जी अच्छा।
साबिर बैठ जाओ। हमारे जमाने में लकड़ी और मिट्टी की छतें होती थीं। सब लोग गर्मियों के आखिर में अपनी छतों पर फर्श बना दिया करते थे ताकि सर्दी में टूटे ना। ایک دفعہ میرے بابا کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، کھانے تک کے پیسے نہیں تھے، پھر انہوں نے ادھر ادھر سے قرض مانگ کر کچھ لکڑیاں خریدی، پھر گڑھا کھود کر اس میں سے منو من مٹی نکالی، وہ خود اپنے ہاتھوں سے گارے کا فرش بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ جب مٹی کا گارا بناتے ہیں تو دو دن اس پر محنت کرنی ہوتی ہے تاکہ مٹی میں چپک پیدا ہو جائے، پھر تگاڑی میں اسے چھت پر لے جایا جاتا ہے، پھر کرنی سے اسے چھت پر لگانا پڑتا ہے، پھر اسے ڈھلان دیتے ہیں تاکہ پانی بہ کر نالی کی طرف جائے۔ یہ ایک نصیحت تھی، لیکن میرے بابا نے وہ سب کام خود کیے۔ ایک ہفتے کے اندر بالکل اکیلے، راتوں میں پاؤں کے درد سے صبح تک آہیں بھرتے تھے، روزانہ ان کی کمر جھکتی جا رہی تھی، تھکے جا رہے تھے، لیکن چھت کا کام انہوں نے مکمل کر دیا تھا۔ جس رات چھت کا فرش مکمل ہو گیا تھا تو میں نے بابا سے پوچھا، کل آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے، شاہ عبدالعظیم جاؤں گا، ایک طویل زیارت اور مرحومین کی فاتحہ کے لیے۔ پھر میں نے پوچھا، تو پرسوں پھر آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے کہ رشتہ داروں کے یہاں جاؤں گا صلح رحمی کے لیے، جسے مصروفیات کی وجہ سے بھول چکا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا جان تو پھر ترسوں کیا کریں گے؟ تو انہوں نے اپنے پیر سیدھے کیے اور کہنے لگے کہ آرام کروں گا، سورج کے نیچے بیٹھوں گا اور آنکھیں بند کر کے سکون کی سانس لوں گا، اب مجھے سردیوں سے چھت کے ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں جو انہوں نے نہ کیا ہو، صرف آرام ہی نہیں کیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
جی ہاں، کتنے سمجھدار تھے آپ کے والد صاحب۔ اور جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، کیا آپ بتا دوں؟
نہیں زیوار، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔
معاف کیجیے گا، میں سمجھی کہ آپ کی بات ختم ہو چکی۔
اچھا اب صابر، میں چاہتا ہوں کل سے میں بھی آرام کر سکوں، مجھے اپنی چھت ٹوٹنے کا بالکل خوف نہیں ہے، چاہتا ہوں کہ اب کسی بھی چیز کا خوف نہیں کروں، مال مارکیٹ تک پہنچے یا نہ پہنچے، فروٹ دبئی ابو ظہبی کویت جائیں یا نہ جائیں، گودام بھر جائیں یا خالی رہ جائیں، برف خانہ ملے یا نہ ملے، اکاؤنٹس اور انشورنس کے پیسے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں، اپنے دماغ میں کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں رکھنا چاہتا ہوں، چاہتا ہوں اپنے باپ کی طرح بن جاؤں، اپنے پاؤں سیدھے کروں اور آنکھیں بند کر کے سورج کے نیچے سکون کا سانس لوں، اور کسی بھی قسم کی فکر میرے دماغ میں نہیں ہو۔ 70 سال سے بھاگ رہا ہوں، اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سنو بیٹا صابر، میں چاہتا ہوں اب گھر کا سارا نظام تم اپنے ہاتھ میں لے لو، میں چاہتا ہوں طاہر کا حصہ بھی اس کے بیٹے کو دے دوں، सुनो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। और मैं भी आसमान के नीचे लेट जाऊंगा और करूंगा। तू बहुत बड़ा है, तेरे काम में कोई शक नहीं। जिबार, अब बताओ तुम क्या बताना चाह रही थी। हाँ कहो, मेरी बात खत्म हो गई। अरे कुछ बोलो तो सही, खामोश क्यों बैठी हो तुम?
कुछ नहीं जनाब, मेरा बात करना फजूल है, माफ कीजिएगा। मैं अनीस बाजी को लेकर उनके कमरे में जा रही हूं, थक गई हैं।
फिरदौस साहब,
क्या हुआ कैसर?
आपकी गाड़ी आ गई है।
अच्छा ठीक है, सुनो रुस्तम भी आया है क्या?
जी बिल्कुल।
अच्छा ठीक है, सुनो उससे कहो वहीं रुके, मैं आता हूँ।
ठीक है जनाब।
मेरी बात करने की हिम्मत नहीं थी और उन्हें बताकर फायदा भी क्या होता। आपने सुना कि बाबा ने क्या कहा, कि आज से हर चीज के मालिक साबिर साहब होंगे। अनीस बाजी, वो औरत सच कह रही थी। हम बदनसीब हैं अनीस बाजी, हम बदनसीब हैं।
ये आपकी लॉकर की चाबी और ये चेकबुक।
जनाब ये आपकी कार की चाबी, पेट्रोल फुल भरवा दिया है।
शुक्रिया।
कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था।
सर और तो कोई काम नहीं?
क्यों नहीं, एक मिनट मेरे साथ आओ। सुनो जो तुमसे कहूं वो तुम तक ही रहना चाहिए।
जी सर आप भरोसा रखें।
अफलाकी से जाकर 20,000 रुपए लो और उस माहिर को ले जाकर दे दो, फिर उसे किसी महंगे होटल में लेकर जाओगे।
एक बात कहूं सर?
हाँ बोलो।
कितने महंगे होटल में?
मैंने कहा किसी महंगे होटल, मतलब ये कि किसी महंगे होटल, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार, समझ गए?
जी सर।
कह रहे हैं कि मेरे भाई के बेटे को ढूंढ लिया है।
अच्छा।
वो चाहते हैं कि मेरे भाई का हिस्सा अलग करके उसके बेटे को दे दे।
तो उन्हें देने दो, तुम्हारे भाई का बेटा है।
परिसीमा अगर बाबा समझ गए तो।
बाबा नहीं करो साबिर,
तुम अब मालिक हो, लेकिन अगर तुम इस काबिल समझो तो फिर।
जी मैडम।
एक कहवा ला दीजिए।
जी ठीक है।
खुदा का शुक्र अदा करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ साबिर। तुम्हारे बाबा तजुर्बाकार और हिम्मत वाले आदमी हैं, इसीलिए तुम में भी हिम्मत होनी चाहिए, फिर सब कुछ तुम्हारा है। फिलहाल खुदा हाफिज। बेवकूफ आदमी, ऐसा काम करते रहोगे तो अपने बाप को फकीर बना दोगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आज रात आपसे मिलूंगी। बहुत अच्छी खबर है हशमत फिरदौस और उसके घर वालों की। फिलहाल खुदा हाफिज।
खुदा की कसम आती, तुमने हर काम में हमेशा जल्दबाजी ही की है। तुम दिल की कमजोर थी, बहुत कमजोर दिल की थी। तुमने मरने में भी जल्दी की थी। मुझे इस दुनिया के झगड़ों में अकेला छोड़ के चली गई। चलो कोई बात नहीं, मेरा भी दिमाग खराब है। अगर तुम इस वक्त जिंदा होती तो ताहिर के बेटे को देख लेती। जी हां, मैंने उसे ढूंढ लिया है। सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन तुमने जल्दबाजी कर दी, रुकी भी नहीं कि उसे देख लेती। नहीं रुकी, उसके लिए मैंने कुछ सोचा है। सुनो आती, मैं मार्केट भी उसके हवाले कर दूंगा, वो संभाल लेगा। मैं बस दूर से बैठा उसे देखता रहूंगा। सिर्फ तुम्हारी कमी रहेगी, उसने मुझे अभी तक दादाजान नहीं कहा। नहीं कहा, अगर तुम होती तो वो तुम्हें जरूर दादीजान कहता। तुम शुरू से लोगों के दिलों में जगह बना लिया करती थी। लेकिन हमेशा मेरे लिए खुदा की तरफ से किसी के दिल में जगह नहीं बनती। बस मेरी किस्मत। क्या तुम उसे पहचान गई थी? लेकिन कैसे? किस तरह से? इतने दिनों से तुम मुझे यही बात बताना चाहती थी ना? कैसे पहचाना उसे? मैं समझ गया हूं, हिम्मत रखो अनीस, मत रखो। मैं चाहता हूं एक बात तुम भी जान लो अनीस, एक दिन जब मेरा मालिक दुकान में नहीं था, मैं उसकी जगह पर बैठ गया। मैं अपने आप को मालिक समझकर बिल्कुल उन्हीं की तरह बात करने लगा। जैसे वो मुलाजिम को बुलाते थे वैसे ही बुलाने लगा। कभी कभी आने वाले कस्टमरों को बेवकूफ बनाने लगा। जब मैं फिल्म देखने जाता और जब फिल्म देखकर वापस आता तो हीरो की तरह गुंडों से लड़ता था और लड़कियों की जान बचाया करता था। उनके पूरे पूरे डायलॉग्स को याद करता था, उन्हीं डायलॉग्स को अदाकारी के साथ बयान करता था। जब चाय के होटल पर जाता तो रुस्तम और सोहराब की दास्तान सुनाता था। हुसैन खुरासानी की जगह अंजुमन में बैठता और नुहा खानी करता था। मुख्तसर ये कि जिसकी भी जगह देख लेता उसकी जगह बैठ जाता और उसकी नकल करता था। लेकिन कभी भी मेरी जबान कट जाए, मैं किसी दीनी आलम की जगह नहीं बैठा। अनीस सुनो, वो हादसा जो आज से 20 साल पहले रोनुमा हुआ था सिर्फ तुम्हारे और खुदा के दरमियान है। बदला लेना वो जानता है, माफ कर दे ये उसकी मर्जी, माफ ना करे ये उसकी हिकमत। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात जान लो, तुम मेरी बहू हो। अनीस, तुम मेरी बेटी की तरह हो। सुनो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, बस एक बार तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मुझे आतिक की कसम मैं सच कह रहा हूं, बीस साल पहले के हादसे में कौन कहता है मेरी गलती तुम्हारी गलती से कम थी।
बाबा, 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 आप इतने अंधेरे में क्यों बैठे हुए हैं? आपके लिए बहुत सारी खबरें लाई हूं। अब आप हशमत फिरदौस के लिए फातिहा पढ़ सकते हैं।
तो तुम कामयाब हो गई?
हाँ, मैं कामयाब हो गई हूँ।
आखिरकार हो ही गया।
फूफी को भी देखा मैंने, एक गोश्त का पहाड़ व्हीलचेयर पर।
एक वक्त था आग का गोला हुआ करती थी वो।
क्या हुआ?
आदि साहिबा हमें देख रही हैं।
तुम घबरा क्यों रहे हो? जल्दी बताओ क्या हुआ?
उसको काम पर लगा दिया है, कल सुबह से जाएगा। वहाँ का मालिक मेरा जानने वाला
है। कितना जानने वाला है?
तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो।
हाँ, हाँ, शाबाश। अब वो हमारी मुट्ठी में है।
अब पता चलेगा ताहिर फिरदौस।
तुमको तुम्हारे बच्चे की कसम, इस तरह के काम मुझसे मत करवाया करो। अगर उसे पता चल गया, वो समझ गया तो।
समझ गया तो मुझे जरा बताओ, उस वक्त जब तुम उसके साथ कुछ गलत कर रहे होते हो तो उसके बारे में क्या कहोगे? आखिर समझ गया तो क्या होगा?
क्या मतलब है तुम्हारा?
कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि तुम कितने गलत कामों में हाथ पांव मार रहे हो। बस फिर ख्वामखा मुझसे भागने की कोशिश मत करो, जो कहती हूँ कहो। अच्छा, पल पल की खबर मुझे देते रहो ताकि मुझे पता चले। एक और छोटा सा काम ताहिर की नौकरी की तरह का तुम मेरे लिए करोगे, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए।
उस सारे काम में मैं कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मुखबिर था, और वो भी अनीस का।
ये सब तो कुछ नहीं है, बल्कि इंसान काम वाला होना चाहिए।
मैं इतने पैसों के लिए इस मोहल्ले के तमाम लोगों को मार दूंगा।
इस मोहल्ले के किसी आदमी की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक शख्स चाहिए।
हो जाएगा, हो जाएगा। आप सिर्फ उसका नाम बोले, उसे मगरिब होने से पहले मार के नदी में फेंक दूंगा।
ताहिर फिरदौस।
अनीस ने गुलामी को कहा कि कुछ ऐसा करो कि ताहिर फांसी के तख्ते तक पहुंचे। लेकिन उसकी सजा सिर्फ मैं नहीं भुगती।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, कोई काम था आपको मुझसे?
अंदर आ जाओ।
जी अच्छा, माफ कीजिएगा जनाब।
दरवाजा बंद कर दो।
जी, वो जो लिस्ट में बना रहा
था। लगा दो।
जी अच्छा, वो जो लिस्ट में बना रहा था, मैंने उसमें देखा कि उसमें कीमतों में कुछ गलती थी, तो उसी को चेक कर रहा था मैं।
नहीं पता।
ताहिर की गाड़ी में तुमने अफ्यून क्यों रखी?
झूठ है, इल्जाम है। मैंने नहीं रखी जनाब।
इल्जाम? इल्जाम?
मत मारे जनाब, मत मारे, मत मारे जनाब। मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब कसूर मेरी बहन का है। जी अच्छा जनाब। इंशाल्लाह खुदा आपको किसी चीज की कमी ना दे। खुदा आपको तवील उम्र दे। बहुत शुक्रिया।
सुनो।
जी जनाब।
मैंने कोई मेहरबानी नहीं की, तुमको निकाल दिया है ताकि तुम एक मफरूर मुलजिम कहलाओ। इस जगह से उस जगह, इस खंडर से उस खंडर, इस नाले से उस नाले, ताकि तुमको न रात को नींद आए और न दिन को सुकून। तुम्हारे दिन रात एक खौफ में गुजरे। अब तुम यहां से भी फरार हो रहे हो और कानून से भी।
हशमत फिरदौस सच कह रहा था। मैं दरबदर हो गया, कभी यहां तो कभी वहां, हर वक्त कभी पुलिस का खौफ था तो कभी फिरदौस का। तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, तुम्हारी मां बीमार थी, उसे दमा हो गया था। मैंने तुम्हारी मां से कहा कि कुछ वक्त के लिए इस मुल्क से चले जाते हैं, फिर हम बंदर अब्बास से दुबई चले गए। एक छोटी सी लांच के तहखाने में सारी औरतें और सब मर्द जमा थे। हवा का दबाव, समंदर का शोर और इंजन का धुआं, ऐसे में हमें सांस भी नहीं आ रहा था। हमारे दुबई पहुंचने से पहले ही तुम्हारी मां की सांसें बंद हो गईं, वो मर गई। दुबई में 11 बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी मजदूरों के साथ एक बहुत छोटे से कमरे में एक मासूम सी बच्ची के साथ वक्त गुजारा है मैंने। बड़ा मुश्किल वक्त गुजारने के बाद तुम बड़ी हुई हो।
मैं 100 दफा मरी हूं तो बड़ी हुई हूं।
जानता हूं मैं
सब कुछ नहीं, कोई भी नहीं जानता। हर दफा जब एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में जाते तो मैं खुद से वादा करती थी कि इस तमाम जिल्लत का बदला जरूर लूंगी। हर दफा बैठकर दिल में यह सोचा करती, कसम खाती थी कि हशमत फिरदौस और उसके घर वालों से इंतकाम जरूर लूंगी। जब भी हमें घर के कचरे की तरह बाहर निकाल दिया जाता था, तमन्ना किया करती थी कि एक दिन इनके एक एक फर्द को सड़कों पर लाऊंगी, उसकी बेटियों को पाबंद कर दूंगी बिल्कुल मेरी तरह, एक रोटी के टुकड़े के लिए, एक जूतों की जोड़ी के लिए। ऐसा काम करूंगी कि हशमत फिरदौस हर रोज 100 दफा अपनी मौत की तमन्ना करेगा। बाबा
वालेकुम अस्सलाम।
जी चलें।
अस्सलामुअलैकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम
अस्सलाम सर।
आ जाइए।
वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम
अस्सलाम।
अस्सलामुअलैकुम सर।
अस्सलामुअलैकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद।
अस्सलामुअलैकुम अस्सलाम।
आ जाइए।
वालेकुम
अस्सलाम।
जी बोलें। वहीं नीचे रखी हुई है। सईद भाई एक कप चाय मेरे लिए भी।
आ जाए। आपने देख लिया वकील साहब?
नहीं, कौन था?
अच्छा, हजारों आदमियों के दरमियान वो बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। देखें, वो है जो मुड़कर देख रहा है।
ओ, अच्छा, वो लड़का।
हाँ, वही हैंडसम जवान।
जी,
मेरे घर के बच्चे ऐसे ही होते हैं, इन्हें देखने वाला देखता का देखता रह जाता है। आखिर हशमत फिरदौस का पोता है। तुमने इसके बाप को नहीं देखा? पहलवान था, पहलवान।
अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं?
अच्छा, क्या मतलब? मैं क्या चाहता हूं, मुझे पता है। चाहता हूं कि उसके साथ बैठकर बहुत सारी बातें करें। सुनो, बता चुका हूं कि वो औरत अपने लिए 3 जाली शनाख्ती कार्ड बनवा चुकी है। स्कूल गया तो जाली कागजात पर, मैट्रिक किया तो वो भी जाली कागजात पर, यूनिवर्सिटी गया तो वो भी जाली कागजात पर, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया तो वो भी जाली कागजात पर, मतलब जो भी काम किया जाली कागजात पर। सुनो, पहले मैं ये चाहता हूं कि उसको अपना नाम दे दूं। उसका नाम होगा मोहम्मद फिरदौस। मैं चाहता हूं कि ये उसका असली नाम हो, उसका असली खानदानी नाम। हो सकता है?
जी, हो सकता है।
कितना टाइम लगेगा इसमें?
इस तरह के मामलात में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन सिर्फ।
लेकिन क्या?
आप बता रहे थे कि इसकी मां ने ये जाली कागजात बनवाए।
जी हाँ, उसी ने सब कुछ किया है।
अपने मफादात के लिए इसे अपनी माँ की कंप्लेन करनी होगी।
करेगा, जो भी कहोगे करेगा।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। और कुछ?
इस वकालतनामे पर दस्तखत करवा लें, बाकी मामलात में खुद संभाल लूंगा।
लाओ, मुझे दो।
नहीं साहब।
मैंने कहा मुझे दो।
अच्छा, आपकी मर्जी।
हाँ, मेरी ही मर्जी। सुनो, फौरन नीचे जाओ और मोहम्मद साहब से कहो कि ऊपर बुला रहे हैं।
साहब, कौन से मोहम्मद साहब?
मोहम्मद साहब वो जो मेरी बाप की कब्र पर बैठा हुआ है। यहां पर कितने मोहम्मद साहब हैं? जाओ भेजो उसे।
जी।
सुनो, मैं जल्दी ही उसके नाम कुछ करना चाहता हूं काम जल्द हो जाए।
जी जरूर फिरदौस साहब, मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगा।
हाँ बिल्कुल। क्या होगा? मोहम्मद फिरदौस इब्ने ताहिर।
साहब आ गए। मोहम्मद साहब।
अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद साहब। सुनो, तुम्हें क्या चाहिए?
मैं चाय की ट्रे लेने आया हूं।
अच्छा ठीक है, ले जाओ।
जी साहब।
बैठ जाओ तुम। आप भी बैठ जाए। तुम हमारे बाराती साहब से तो नहीं मिले होगे?
नहीं सर।
बाराती साहब हमारे वकील हैं, इनके काम का जवाब नहीं। तेज हैं, काबिल हैं और गैरतमंद हैं। हर मामले को बिल्डोजर की तरह साफ करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पूरे ईरान में ढूंढो तो इन जैसा वकील नहीं मिलेगा, बल्कि इंटरनेशनल हैं।
जी अच्छा।
मालूम है यहां क्यों आए हैं?
नहीं सर।
मैंने सारी बातें बाराती साहब को बता दी हैं। राजदार हैं, यहां इसलिए आए हैं कि तुम्हारा हक दिला सकें। समझे?
जी सर।
परेशान है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी की सारी दौलत बस। वो तो काफिर की है, हराम है, लेकिन तुम्हें नाम तो चाहिए। अपने वालिद का नाम तो चाहिए ना। तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पर जो तुम्हारा नाम लिखा है वो तो नकली है बिल्कुल। उसमें बाप का नाम भी नकली है। तुम्हारा नाम तो मोहम्मद फिरदौस है, فرزند طاہر، یہ سب تو تمہیں چاہیے؟
جی سر.
ماشاءاللہ، باراتی صاحب سب ٹھیک کر دیں گے. کیوں جناب باراتی؟
جی ضرور فردوس صاحب.
تمہیں بس اس پر دستخط کرنے ہیں.
یہ کیا ہے؟
اچھا تو بیٹا یہ بتاؤ، تم نے میٹرک کہاں سے پاس کیا تھا؟ اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ وکالت نامہ ہے، جلدی سے اس پر دستخط کرو تاکہ باراتی صاحب باقی کام پورے کریں.
ٹھیک ہے سر.
معاف کیجئے گا فردوس صاحب، میرے پروفیشن کے حساب سے میرے موکل کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس پر دستخط کر رہا ہے.
اچھا اس کو معلوم ہے یہ وکالت نامہ ہے؟
جی ہاں، لیکن انہیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان کا وکیل ہونے کے ناطے کس کام کو انجام دینے والا ہوں.
مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
مفادات اور طلب کرنے کے حوالے سے آپ کی طرف سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی والدہ پر جعلی شناختی کارڈ بنانے کے جرم میں کمپلین کروں.
ہاں یہی تو ہے، پتا ہے کہ کمپلین کرنی ہے. اس لڑکے کو دربدر کر دیا ہے، 20 سال تک اس سے جھوٹ بولا گیا ہے، 20 سال تک اسے دھوکے میں رکھا گیا ہے، 20 سال تک اسے ادھر ادھر گھمایا گیا ہے، 20 سال لاوارث رکھا ہے. 20 سال تک یہ سب کچھ کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے معلوم ہونا چاہیے. بتاؤ انہیں، مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟
حرفای من بشین با تمام وجود، من از عشق میگم تو هم بگو رفتنت خواب بود. بشین پای حرفای من، بشین دل بده گوش کن، در رو جهانو فراموش کن. فقط من، فقط تو، فقط من و تو میارزیده هم یه شب زندگی بی تو رو باید قیدشو میزدم. فقط من، فقط تو، فقط من و تو میارزیده هم یه شب زندگی تو رو باید قیدشو می زدم. نبودی ببینی چقدر زمان بی تو غمگین گذشت. تو رویای من غم نبود ولی تلخ و شیرین گذشت. نبودی ببینی چطور میکشه آدمو، باید از یه جایی به بعد ادامه نمیدادمو، ادامه نمیدادمو، ادامه نمیدادمو. رسیدم به جایی که عشق نبودش یکم بود شد. زمین زیر پام خالی و یه آن زندگیم دود شد. خوشی رفت و شادی هم بود، دلم شور فردا زد، گذشته برام تازه شد مثل داغ روزای بعد. میدونم تلاشم یه روز یه جایی اثر میکنه. ببین تا کجا تا چه هم یه عاشق خطر میکنه.